ये आकाशवाणी दिल्ली है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में उत्कल केसरी डॉक्टर हरिकृष्ण मेहताब की 125वीं जयंती समारोह का उद्घाटन किया। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने 1984 सिख विरोधी दंगों के 47 पीड़ितों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 11 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण कम करने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान ग्रैप के अंतर्गत योजना में संशोधन किया। भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आवास पर प्रदर्शन किया और केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का नई दिल्ली में वर्ष 2022-23 के लिए उस्ताद बिस्मिल्ला खां युवा पुरस्कार प्रदान करेंगे। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में उत्कल केसरी डॉक्टर हरिकृष्ण मेहताब की 125वीं जयंती समारोह का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि हरिकृष्ण मेहताब एक दूरदर्शी नेता थे। राष्ट्रपति ने कहा कि वे जानते थे कि विकास के साथ साथ सांस्कृतिक जागरूकता भी आवश्यक है। उन्होंने हरिकृष्ण मेहताब को एक प्रख्यात लेखक बताया जिन्होंने ओडिशा में कला साहित्य और संगीत को बढ़ावा देने में बहुत बड़ा योगदान दिया।
हरिकृष्ण मेहताब सहज एवं सरल भाषा में भाषण देते थे। ओडिशा के बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक सभी उनके लेखों की प्रतिभा प्रशंसा करते हैं। सामाजिक राजनीतिक सांस्कृतिक विषयों पर मेहताब के लेखन से उनकी सोच की मौलिकता का पता चलता था।
राष्ट्रपति ने कहा कि डॉक्टर हरिकृष्ण मेहताब ने ओडिशा के मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान कई महत्वपूर्ण विकास कार्य किए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि महानदी पर बहुउद्देशीय बांध परियोजनाओं के निर्माण में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हीराकुडा और अन्य परियोजनाओं के कारण ओडिशा बिजली उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बन गया। श्री के संजय मूर्ति ने नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के रूप में शपथ ली है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में उन्हें पद की शपथ दिलाई।
मैं कुंडरू संजय मूर्ति
जो भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक नियुक्त हुआ हूँ ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति
सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा।
श्री के संजय मूर्ति ने श्री गिरीश चंद मुर्मू का स्थान लिया है। श्री मूर्ति को अगस्त 2020 में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। इससे पहले श्री मूर्ति ने शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव के रूप में कार्य किया था। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 11 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। पार्टी ने छतरपुर विधानसभा सीट से ब्रह्म सिंह तंवर, मटियाला से सुमेश शौकीन, घोंडा से गौरव शर्मा, सीमापुरी से वीर सिंह धींगान, सीलमपुरी से चौधरी जुबैर अहमद और किराड़ी से अनिल झा को मैदान में उतारा है। दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने कहा कि पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में इन नामों को अंतिम रूप दिया गया।
आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी की अध्यक्षता में आम आदमी पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर कमेटी पीएसी की बैठक हुई, जिसमें 11 उम्मीदवारों के नाम को फाइनल किया गया। जिन 11 उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए गए उसमें ज्यादातर वो सीटें हैं जहां पर अभी आम आदमी पार्टी के विधायक नहीं है।
भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी की पहली सूची लेकर कहा है कि ये उनकी घबराहट दर्शाती है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि सूची में श्री केजरीवाल ने न ही मंत्रिमंडल और न ही अपने सहयोगियों को टिकट दिया है।
मंत्री अपनी पहली सूची जारी करते समय अपना नाम नहीं, अपने मंत्रिमंडल के किसी सदस्य का नाम नहीं, और तो और जो बहुत करीबी सहयोगी हैं उनका भी उस लिस्ट में नाम नहीं है। तो आप समझ लीजिए कि ये आम आदमी पार्टी कितनी कॉन्फिडेंट है चुनाव लड़ने में। पहली सूची दिखा रही है कि आम आदमी पार्टी का दिल्ली में हश्र क्या होने वाला है।
दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पी कृष्णमूर्ति ने कहा है कि इस महीने की 23 और 24 तारीख को मतदाता पहचान पत्र बनाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। श्री कृष्णमूर्ति ने कहा कि ये अभियान 29 नवंबर को पूरा होगा और अंतिम सूची अगले साल 6 जनवरी को प्रस्तुत की जाएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि चुनावी रिकॉर्ड में संशोधन के लिए दावे और आपत्तियां इस महीने की 28 तारीख तक दर्ज की जा सकती हैं। श्री कृष्णमूर्ति ने बताया कि इसके लिए पोर्टल या मतदाता हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के इलाकों में प्रदूषण कम करने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान ग्रैप योजना में संशोधन किया है। संशोधित योजना में आयोग ने दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर जिलों में कक्षा पांचवी तक के लिए कक्षाएं ऑनलाइन माध्यम से आयोजित करने का निर्देश दिया। नई योजना में एनसीआर क्षेत्र के लिए अतिरिक्त उपाय भी प्रस्तुत किए गए हैं, जिसमें योजना के तीसरे चरण का खंड 12 भी शामिल है। इस बीच दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई है। आज शाम 7 बजे तक औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 365 दर्ज किया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली के कुछ इलाकों में 400 के पार दर्ज किया गया। दिल्ली के वजीरपुर में 425, जहांगीरपुरी में 429, अशोक विहार में 402, बवाना में 401, शादीपुर में 411 और पंजाबी बाग में 405 AQI दर्ज किया गया। 0 से 50 के बीच AQI अच्छा, 51 से 100 के बीच संतोषजनक, 101 से 200 के बीच मध्यम, 201 से 300 के बीच का खराब और 301 से 400 के बीच का बहुत खराब माना जाता है। 401 से 450 के बीच का AQI गंभीर माना जाता है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.ub.in पर लॉगिन कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में आज पार्टी के सदस्यों और कार्यकर्ताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा ने शीश महल बंगले से संबंधित कथित भ्रष्टाचार को लेकर आपके संयोजक से जवाब मांगा। इस प्रदर्शन में हाल ही में आम आदमी पार्टी से भाजपा में शामिल हुए नेता कैलाश गहलोत ने मीडिया से बातचीत में बताया कि शीश महल भ्रष्टाचार का मुद्दा है और भाजपा इस मामले में जांच की मांग कर रही है।
शीश महल एक ऐसा इशू है जो कोई भी व्यक्ति अगर आम आदमी पार्टी से जुड़ा तो वो उसके लिए बहुत डिस्टर्बिंग है। एक साधारण आदमी के लिए भी जब वो देखता है कि किस प्रकार से वहाँ पर पैसा खर्च किया गया तो वो ये भी शो करता है कि किस प्रकार से आम आदमी पार्टी के जो वैल्यूज हैं कॉम्प्रोमाइज हुए हैं। हम तो मांग कर रहे हैं कि इसके अगेंस्ट कार्रवाई हो।
भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की कड़ी आलोचना की है। श्री गांधी ने अमरीकी वेबसाइट पर कथित तौर पर रिश्वत लेने के आरोप लगने के बाद सरकार को दोषी बताया था। नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने बताया कि कानून इस मामले में अपना काम करेगा और संबंधित कंपनी अपना बचाव स्वयं करेगी। श्री पात्रा ने मामले की संयुक्त संसदीय समिति से जांच कराने की श्री गांधी की मांग को खारिज करते हुए उन पर भारतीय बाजार को कमजोर करने के प्रयास का आरोप लगाया। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने आज 1984 सिख विरोधी दंगों के 47 पीड़ितों को भर्ती योग्यता में छूट देने के बाद नियुक्ति पत्र वितरित किए। इसके अलावा श्री सक्सेना ने संबंधित विभाग को 437 अन्य आवेदनों के सत्यापन को शीघ्र पूरा करने का आदेश भी दिया। उन्होंने कहा कि इन परिवारों के लिए ये केवल नौकरी नहीं बल्कि उनके जीवन में आत्मसम्मान और नई शुरुआत का प्रतीक है। वहीं उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना कल 8 सरकारी विभागों के 702 नवनियुक्त सरकारी कर्मचारियों को विज्ञान भवन में नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने रोहिणी सेक्टर 27 में आज एक स्कूल का उद्घाटन किया। इस स्कूल में 121 कमरे, 10 अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं, सेंट्रल लाइब्रेरी, बहुउद्देशीय हॉल सहित तमाम सुविधाएं हैं। मुख्यमंत्री आतिशी ने मीडिया से बातचीत में बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाया जिससे वंचित समाज को अच्छी शिक्षा प्राप्त हो सके। उन्होंने कहा कि फरवरी में होने वाले चुनाव में दिल्लीवासी एक बार फिर आम आदमी पार्टी सरकार को दोबारा चुनेंगे।
पिछले 10 सालों से जब से दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी को अपना मुख्यमंत्री बनाया, जब से आम आदमी पार्टी की सरकार चुनी, तब से इस सरकार ने बच्चों की शिक्षा को, उनके भविष्य को अपनी पहली प्राथमिकता बनाया है और मुझे खुशी है कि आज सेक्टर 27 रोहिणी के बच्चों को अपने घर के बगल में एक शानदार स्कूल मिला है।
केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कल नई दिल्ली में वर्ष 2022 और 2023 के लिए उस्ताद बिस्मिल्ला खां युवा पुरस्कार प्रदान करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया कि 82 युवा कलाकारों को उस्ताद बिस्मिल्ला खां पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।
संगीत नाटक अकादमी ने वर्ष 2006 में 40 वर्ष की आयु तक के युवा प्रदर्शन कलाकारों के लिए भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्ला खां के नाम पर इस पुरस्कार की शुरुआत की थी। यह पुरस्कार संगीत, नृत्य, नाटक, लोक और आदिवासी कला और कठपुतली के क्षेत्र में उत्कृष्ट युवा कलाकारों को दिल्ली और दिल्ली के बाहर आयोजित एक विशेष समारोह में प्रतिवर्ष दिया जाता है। युवा पुरस्कार में 25,000 रूपए नकद, एक पट्टिका और एक अंग वस्त्रम दिया जाता है। प्रादेशिक समाचार के लिए नेहा गोस्वामी।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में आज आगंतुकों में काफी उत्साह दिखाई दिया। प्रगति मैदान के भारत मंडपम में जारी इस मेले का विषय विकसित भारत @2047 है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मेले में सभी राज्यों की वस्तुएं उपलब्ध हैं, जिनकी खरीदारी करने के लिए दिल्ली सहित देश और विदेशों से पर्यटकों की भीड़ है।
मेले में लोग राज्यों के विभिन्न मंडपों में जाकर सांस्कृतिक धरोहर और हस्तशिल्प कला का आनंद ले रहे हैं। बिहार पवेलियन में मधुबनी पेंटिंग, सिक्की आर्ट और अन्य हस्तशिल्पों की कारीगरी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। बिहार पवेलियन के स्टॉल नंबर 6 पर मधुबनी पेंटिंग चित्रकार ममता देवी की रामायण की कहानी पर बनाई गई पेंटिंग लोगों का ध्यान खींच रही है। ममता देवी ने बताया कि संपूर्ण रामायण को उन्होंने एक कैनवास पर उकेरा है और इसकी मांग भी बहुत है।
जो हम संपूर्ण रामायण बनाते हैं तो पूरा ही थीम सीता जी का हुआ, एक एक चीज बनाते हैं।
मेले के टिकट ITPO की आधिकारिक वेबसाइट, DMRC ऐप और दिल्ली मेट्रो के चुनिंदा 55 स्टेशनों के माध्यम से ऑनलाइन या ऑफलाइन खरीदे जा सकते हैं। प्रादेशिक समाचार के लिए अक्षित वैद्यान।
आज विश्व मत्स्य पालन दिवस है। हर साल इस दिन वैश्विक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसमें स्थायी मत्स्य पालन के महत्व और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र तथा मछली पकड़ने वाले समुदायों की आजीविका की रक्षा करने की आवश्यकता को महत्व दिया जा सके। इस साल के विश्व मत्स्य दिवस का विषय है भारत का ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन, लघु और सतत मत्स्य पालन को सशक्त बनाना। इस अवसर पर मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि भारत में अंतर्देशीय मत्स्य पालन की हिस्सेदारी समुद्री मत्स्य पालन से कहीं अधिक है, जो उल्लेखनीय है। एक रिपोर्ट।
इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने मत्स्य पालन क्षेत्र और भारत की ब्लू इकोनॉमी को मजबूत करने के उद्देश्य से कई पहलों और परियोजनाओं की शुरुआत की। इनमें डेटा संचालित नीति निर्माण के लिए 5वीं समुद्री मत्स्य जनगणना, स्थायी शार्क प्रबंधन के लिए शार्क पर राष्ट्रीय कार्य योजना और श्रीलंका, बांग्लादेश और मालदीव के सहयोग से बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में अवैध, अप्रतिबंधित और अनियमित मछली पकड़ने को रोकने की पहल शामिल है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
राजधानी के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में कल से 3 दिवसीय ओडिशा पर्व शुरू हो रहा है। दिल्ली वासियों को इस दौरान ओडिशा की कला, संस्कृति, साहित्य, खानपान, परिधान और विरासत की झलक मिलेगी। ओडिशी, संबलपुरी, छऊ सहित अनेक लोक नृत्य और राज्य के प्रख्यात कलाकारों के संगीत कार्यक्रम इस वर्ष आकर्षण का प्रमुख केंद्र होंगे। एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स ANTF ने मादक पदार्थों के खिलाफ न बर्दाश्त करने की नीति के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय तस्करों के गिरोह को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने बताया कि ANTF ने इस गिरोह में एक नाइजीरियाई नागरिक को भी गिरफ्तार किया है। इस गिरफ्तारी में टास्क फोर्स ने 3 किलोग्राम के नशीले पदार्थ और 6,000 से अधिक नशीली दवाइयां जब्त की हैं, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 4 करोड़ रुपए आंकी गई है। दिल्ली में आज सवेरे हल्का कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.1 डिग्री सेल्सियस कम 10.2 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान दिल्ली और आसपास के इलाकों में आमतौर पर मौसम सामान्य रहेगा। कल सवेरे हल्का कोहरा छाए रहने की संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में उत्कल केसरी डॉक्टर हरेकृष्ण मेहताब की 125वीं जयंती समारोह का उद्घाटन किया। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के 47 पीड़ितों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 11 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण कम करने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के ग्रेटर रिस्पांस एक्शन प्लान ग्रैप के अंतर्गत योजना में संशोधन किया। भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर प्रदर्शन किया। इसके साथ ही ये प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।